कि दोनों के बीच में भेद रेखा तो है, पर संबंध क्या है दोनों के बीच? तो कहते हैं संश्लेष संबंध। इसको कहते हैं, एक नई टर्म है, संश्लेष संबंध। जैसे दूध और पानी का संश्लेष संबंध होता है, ऐसे ही मेरे द्रव कर्म का और आत्मा का संश्लेष संबंध है। दोनों एकदम इंटरमिगल हो गए, एक दूसरे से पृथक नहीं किए जा सकते। जाने तो जा सकते हैं,
पृथक
कर्म और आत्मा, द्रव कर्म और आत्मा का संश्लेष संबंध। और जैसे कि एक स्फटिक मणि है, क्वार्स, क्वार्स के पीछे अगर कोई भी कलर का फूल रख दीजिएगा, पूरा क्वार्स उसी कलर का हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, ये उसकी अपनी क्वालिटी। तो ठीक, अब कैसा हो गया वो पूरा क्वार्स रेडिश हो गया, उस रेड कलर की वजह से या ग्रीन कलर की वजह से पूरा ग्रीनिश हो गया, वो पूरा का पूरा वैसा परिणमन कर गया है। तो कहते हैं ये जो संबंध है उस लाल रंग के फूल और जो स्फटे के उसके बीच का, ये जो संबंध है कि वो उसी रूप परिणमन कर गया, इसको बोलते हैं तादात्म संबंध। तद आत्म तद्रूप हो गया, दूध पानी रूप तो नहीं हुआ है पर पानी के साथ मिक्सअप है।
लेकिन मुक्त अवस्था में तो अलग अलग हो ही जाते हैं ना।
ठहरिएगा आप एकदम, अभी उसकी उतनी ऊंचाई क्यों कर रहे हैं? अभी तो साइंस ऑफ पेनिट्रेशन, साइंस ऑफ सेपरेशन सीख रहे हैं अपन। संबंध जान लिया है, अब संबंध के ऊपर हथौड़ी चलानी है मुझे, छैनी लगा करके, वो बारीक सी छैनी है, भेद रेखा कौन सा संबंध है मैं पहचानूं तो तभी तो सेपरेट कर पाऊंगा। तो कहते हैं मेरे द्रव कर्मों के साथ आत्मा का संश्लेष संबंध है, दोनों एक साथ उपस्थित हैं, लेकिन मेरे जो भाव कर्म है, जो राग द्वेष है, वो मेरी आत्मा के साथ एकदम तादात्म्य है। मेरे भाव कर्मों का तो संबंध अलग है, मेरे द्रव कर्मों का संबंध अलग है,
एक संश्लेष है दूसरा
तादात्म्य है। भाव कर्म तादात्म्य है क्योंकि उसी रूप परिणमन कर गए हैं। लेकिन
मणि वाला
उसका उदाहरण मणि, स्फटिक मणि, बिल्लौर जिसको बोलते हैं या कि क्वार्ज़ाइट बोलते हैं, वो क्वार्स की विशेषता है कि उसके पीछे जो भी रखा जाएगा वो क्वार्स उसी फॉर्म में चेंज, उसी रूप हो जाएगा, उसी कलर का होगा। तो ये हो गया तादात्म्य संबंध। और वो जो दूध और पानी का संबंध है वो संश्लेष संबंध है, दोनों को एकदम सेपरेट किया जा सकता है। दूध पानी में कन्वर्ट हुआ नहीं है, वो एज इट इज है। लेकिन ये राग द्वेष की वजह से आत्मा तो राग द्वेष रूप ही हो गई है, जरा भी कहीं से कहीं तक 1% भी ऐसा नहीं है कि जो राग द्वेष से मलिन ना हो पूरी। इसी को बोलते हैं स्वभाव से अन्यथा परिणमन करना, विभाव है। ये बताता है हमें अध्यात्म कि हम वर्तमान में किस वैभाविक स्थिति में हैं, हमारी स्वाभाविक स्थिति क्या है। अध्यात्म का क्षेत्र अपने स्वभाव और विभाव दोनों को पहचानना, और पहचान कैसे होगी तो अपने संबंधों से पहचान। नो कर्म के साथ भी संश्लेष संबंध है, द्रव कर्म के साथ भी संश्लेष संबंध है, लेकिन भाव कर्म के साथ तादात्म्य संबंध है। लेकिन सावधानी रखना, जैसा कि गुणों के प्रति हमारा तादात्म्य है, जैसे कि आत्मा और ज्ञान, जैसे कि अग्नि और उष्णता, अग्नि से उष्णता को अलग किया जा सकता है क्या? इसी तरह से आत्मा से ज्ञान को अलग नहीं किया जा सकता, ये भी तादात्म्य संबंध है, पर भाव कर्म के साथ ऐसा तादात्म्य नहीं है, इसलिए इसको कहेंगे क्षणिक तादात, और वो कहलाएगा त्रैकालिक तादात। बस अब तादात्म्य भी हमने दो प्रकार की डिवाइड कर दी है, कि एक तादात्म्य है जो क्षणिक तादात्म्य है, जो संसारी अवस्था में है, लेकिन मुक्त अवस्था में वह संबंध नहीं है जो आपका प्रश्न है। वहां पर तादात्म अपने गुणों के साथ, आत्मा की जो क्वालिटीज हैं वो उसके साथ में हमेशा रहेंगी, वो कभी डिस्टर्ब नहीं होंगी। वो जब विपरीत परिणमन कर जाती हैं तब भी तो तादात्म्य है उनके साथ, तब हम उसको क्षणिक तादात मानते हैं। हमने दो चीजें क्लियर कर ली कि जो भी मेरे भीतर अंतरंग में जो राग द्वेष इत्यादि कषाय भाव हैं, नो कषाय भाव हैं, उन सब के साथ तो मेरा तादात्म्य संबंध है। ये जो द्रव कर्म या कि जो वाही पदार्थ हैं सब जो है पृथक हैं, शरीर के साथ भी मेरा संश्लेष संबंध है। अब मुझे प्रोसीजर शुरू करना है, जिसके साथ संश्लेष संबंध है बहुत आसान है कि उससे दूर हटा जा सकता है, लेकिन जिसके साथ तादात्म्य संबंध है, मैं उसी रूप हो गया हूं तो जब जब सोचूंगा तो उसी रूप सोचूंगा, जब मैं राग द्वेष से युक्त हूं तो जो कुछ भी फीलिंग होगी वो सब राग द्वेष की होगी। देह से तो ऊपर उठ सकता हूं लेकिन अपने आत्मा में भीतर जो बैठी हुई कषाएं हैं उनसे अपने को पृथक, कितना सूक्ष्म है बताइए। जैसे कि शब्द और विचार, शब्द तो पकड़ में आते हैं, विचार पकड़ में आते हैं क्या? नहीं आते हैं, ऐसा ही सूक्ष्म है। शरीर तो पकड़ में आता है, लेकिन भीतर एक जो कर्मों की वर्गणाओं का शरीर है वो भी पकड़ा जा सकता है, पर उस वर्गणाओं के माध्यम से जो मेरे भावों में परिणमन हो रहा है, राग द्वेष हो रहा है, उससे कौन पकड़ सकता है? भावों को तो मैं ही पकड़ सकता हूं। मैंने जान लिया कि ये राग द्वेष मेरे विभाव हैं, मेरा स्वभाव इन राग द्वेष से रहित है। ये बात बहुत संतोष देती है। अध्यात्म का क्लू है ये। अध्यात्म सिर्फ यही बताता है कि तुम अपने विभाव और स्वभाव को जान लो। तुम अपने विभाव को स्वभाव मान के मत बैठ जाओ कि कषाय मेरा स्वभाव, और ये भी मत मान के बैठ जाओ कि वो मेरा विभाव नहीं है। राग द्वेष को अगर अपना नहीं मानोगे तो राग द्वेष हटाओगे क्यों? थोड़ा सा समझने जैसी चीज है भाई, एकदम समझ में नहीं आएगी। दो चीजें स्पष्ट हो जाती हैं। राग द्वेष मेरा नहीं है ये जानना भी जितना जरूरी है, उतना ही ये जानना जरूरी है कि राग द्वेष भी मेरा ही है। एक स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ व्यू कहता है कि राग द्वेष मेरा नहीं है, मेरी ओरिजिनलिटी नहीं है इसलिए मेरा नहीं है, और मेरी अपनी इम्प्योरिटी तो है राग द्वेष, इसलिए व्यवहार कहता है कि उसको भी अपना मानो, वरना हटाओगे कैसे उसके लिए? फिर तो हम बड़े आसान हो जाएगा कि हमारा है ही नहीं, छोड़ा झगड़ा ही खत्म। हमारा नहीं है तो फिर आप ऐसा प्रलमन क्यों कर रहे हैं? जब आपका नहीं है राग द्वेष तो आप राग द्वेष कर क्यों रहे हैं? ये जो कर रहे हैं इसका मतलब है कि आप ही हैं इसके जिम्मेदार। आप इसकी जिम्मेदारी खुदगल पर नहीं छोड़ सकते कि ये द्रव कर्मों के उदय से मुझे राग द्वेष होता है, क्रोध का उदय आया इसलिए मैंने क्रोध कर लिया। किया तो आपने है ये, इसको तो नहीं होता। अगर इसका नेचर होता तो इसको भी राग द्वेष होना चाहिए था। होता आत्मा को है, इसका मतलब है कि आत्मा का भी उसमें कोई ना कोई रोल है। मुझे ये पहचानना पड़ेगा कि हाँ आत्मा का भी रोल है, और फिर उसके साथ साथ लेकिन ये मेरी ओरिजिनलिटी नहीं है,
मेरा
स्वभाव नहीं। सबके राग द्वेष अलग है, लेकिन इम्प्योरिटी एक ही है। इम्प्योरिटीज तो बहुत हो सकती है, इम्प्योरिटी
अलग अलग है
हर एक की। पर ओरिजिनलिटी सब
जब ओरिजिनल फॉर्म में पहुंचेगा तो सब आत्मा एक सी है।
इसलिए तो हमने 24 भगवानों के एक से फेस बनाए, अलग अलग बनाया क्या? वो उनका आंतरिक फेस है, वो उनका भीतराग अवस्था का फेस है एक जैसा। अगर चिन्ह नहीं डले हो तो आप नहीं पहचान सकते कि महावीर स्वामी ये देखो पहचान गए।
इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि
क्यों ये एक से बनाए। वो उनका भीतरी चेहरा है, ओरिजिनल फॉर्म है वो उनका
आत्मा।
और अगर बाहर का आकार बना दिया होता तो फिर उनके जो कहते हैं फेस बनाए जाते, वो तो बहुत बाहरी रूप है उनका। हमने ये ज्ञान शरीरी है, वो इस बाहरी शरीर से रहते हैं। बाहरी शरीर नहीं बनाया ये, हमने उनका अंतरंग शरीर बनाया, दिखता है कि बाहरी शरीर है। तो ये उनकी ओरिजिनल। इस तरह हमें संबंधों को जानना, और फिर जब हम संबंध जान लेंगे तभी कितना हमारे संबंधों के साथ भेद है, कितना अभेद है। देखिएगा कि पहले तो लगता था ये चीजें भी मेरी हैं, पर अब लग रहा है कि ये चीजें तो बिल्कुल भिन्न हैं, साफ दिखाई पड़ रही हैं भाई। फिर लगता था कि चलो शरीर तो मेरा है, फिर अब तो ऐसा भी लगने लगा कि नहीं शरीर भी मेरा नहीं है। फिर लगता था कि चलो कर्म तो हमारे हैं जो हमने बांधे हैं, क्योंकि कर्म भी तुम्हारे साथ संश्लेष संबंध है लेकिन तुम्हारा उनसे कोई ज्यादा सरोकार नहीं। तब फिर मेरे अंदर जो भाव हो रहे हैं वे तो मेरे हैं, कहते हैं भाव भी तुम्हारे हैं पर ये वैकारिक भाव है, तुम्हारे अपने ओरिजिनल भाव नहीं है। तो पहले नो कर्म से मुक्त किया, फिर द्रव कर्म से मुक्त किया, फिर भाव कर्म से भी मुक्त कर दिया, तब ये अनुभूति होगी कि मैं इन सब से पृथक क्या हूं, ये फील करना। अब अपने अनुभव की छैनी से इन तीनों को पृथक करना, ज्ञान की छैनी से नहीं, सुबुद्धि छैनी है। तो लोग समझते हैं सुबुद्धि मतलब बुद्धि की छैनी से, बुद्धि नहीं कर सकती ये काम। बुद्धि समझ सकती है नहीं, अनुभूति। ज्ञान और आचरण से निकला हुआ जो उसका रिजल्ट है वो अनुभूति जो है इनके बीच भेद रेखा डाल पाएगी। मैं फील कर रहा हूँ कि हाँ ये अलग ये अलग, जान तो मैं पहले से गया था लेकिन अब फील कर रहा हूँ कि मेरे राग द्वेष भी मेरे से पृथक है, मैं कुछ और। जिस क्षण मैं राग द्वेष से पृथक अपने को महसूस करता हूँ वे क्षण मेरे आत्मानुभूति के क्षण, वरना तो 24 आवर्स राग द्वेष से मलिन आत्मा का अनुभव हो सकता है और क्या होगा बताइए? थोड़ा सा सोचिए। जो कहता है कि मुझे आत्मा की अनुभूति हो रही है, वस्त्र पहने हुए है फिर भी, तो वो क्या कर रहा है? वो आत्मा की अनुभूति तो कर रहा है लेकिन राग द्वेष से मलिन आत्मा की अनुभूति कर रहा है। वो शुद्ध आत्मा की अनुभूति कहाँ कर रहा है बताइए? तो आत्मानुभूति शब्द का उपयोग हम कब करेंगे? कहते जब शुद्ध आत्मा की अनुभूति हो तब उसको आत्मानुभूति मानना, ये तो सब राग द्वेष रूप है अनुभूति। थोड़े क्षण के लिए आपने राग द्वेष से रहित होकर के भी अगर कर लिया तो कहते हैं वस्त्रों में बैठा हुआ व्यक्ति तो राग द्वेष से पृथक अनुभव कर ही नहीं सकता, वरना तीर्थंकर क्यों त्यागे? अगर वहीं पर विशुद्ध आत्मा की अनुभूति हो जाती तो फिर ये सब परिग्रह और ये सब छोड़ के और क्यों बाहर आना पड़ता? इतना ही अध्यात्म का रहस्य है। अध्यात्म पहली बात विशुद्ध अनुभूति का क्षेत्र है, अध्यात्म हमारे आत्मा की निकटता को अनुभव कराने वाला है, और अध्यात्म अपने ज्ञान को आचरण में ढाल करके उसके रिजल्ट्स देने का नाम है, या कि ज्ञान को अनुभूति में कन्वर्ट करने का नाम अध्यात्म। जानते जाते हैं और अनुभव में कन्वर्ट करते जाते हैं, इसका नाम अध्यात्म है। और इसके माध्यम से हम जानते हैं कि क्या किससे हमारा अभेद है और कितनी चीजें हमसे भिन्न है। तो भेद विज्ञान हम करते हैं, भेद और अभेद दोनों को जानते हैं। इसलिए अध्यात्म में दो शब्द और आते हैं कि जब हम अभेद की अनुभूति करते हैं, अभेद रत्नत्रय जिसको कहते हैं, वही हमारे लिए साक्षात मोक्ष का कारण है। जब तक रत्नत्रय भेद रूप में रहता है तब तक वो भी कार्यकारी नहीं है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों पृथक पृथक हैं, जब तक तब तक कोई कार्यकारी नहीं। तीनों जब एक में एक हो जाते हैं, जब अभेद रत्नत्रय होता, भेद रत्नत्रय मतलब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, अभेद रत्नत्रय मतलब तीनों की ट्रिनिटी की एक रूपता,
वो फिर मिलके अनुभव अनुभूति कराती है।
वो वही तो
अनुभूति,
भेद से हम अभेद पर पहुंच गए और अभेद से तो खत्म। जिस क्षण हमको अभेद की अनुभूति हुई वो तो हमारी, वही तो हमारी अनुभूति। श्रद्धा ज्ञान और आचरण तीनों एक मेक हो गए भाई, बताइए वो क्या क्षण होते होंगे। अभी तो श्रद्धा होती है, जान भी लेते हैं, लेकिन अनुभव कहाँ जुड़ पाता है उसके साथ में, आचरण कहाँ जुड़ पाता। तीनों जब एक मेक होते हैं तब जो अनुभव होता है वो अभेद के द्वारा ही साक्षात अनुभूति होती है। भेद तो सिर्फ हमें अभेद तक पहुंचने में मदद करता है, सिर्फ अभेद तक पहुंचने में मदद करता है। ये उसका सीधा कहना चाहिए अध्यात्म का सार तो इतना ही है। इससे ज्यादा जो है फिर इसी का विस्तार है सारी चीजों में, मेरे ख्याल से तो जो है इसमें कहीं कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन नहीं है।
जो संबंध है वो भी उस उदाहरण से एक्सप्लेन होते हैं, जब पीछे से मणि के पीछे वो
हटा लीजिएगा तो फिर जो कहते
हैं एग्जाम्पल है,
जब हमने उस कलर्ड जो चीज थी जब उसको हमने स्फटिक के सामने से अलग कर दिया तो स्फटिक तो अपनी ओरिजिनल टीम में है।
क्षणिक वाला एग्जांपल ही से
इसका मतलब है, हाँ, इसका मतलब है कि राग द्वेष मेरे अपने क्षणिक हैं, इस संसार में है, इसलिए जिस दिन राग द्वेष हट जाएंगे उस दिन तो मेरी अपनी ओरिजिनलिटी है ही, मुझे कहीं से लाना ही नहीं है। इस स्फटिक को कोई धो पहुंच के थोड़ी करना है, वो जो इम्पोर्टीज है उसको अलग कर दीजिएगा तो वो तो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ ही जाए। लेकिन कोई ये कहे कि वो तो अपने ओरिजिनल फॉर्म में है, ये अशुद्धियां बाहर बाहर है, वो तो बाहर बाहर कहाँ है बाबा, पूरा का पूरा परिणमन कर गया, रेडिश कलर का हो रहा है, पूरा रेडिश कलर का हो रहा है और आप कह रहे हैं कि बाहर बाहर है। उष्णता को जैसे हम पृथक नहीं कर सकते अग्नि से, वैसे ही है। कई लोग इस चीज को ऐसे इंटरप्रेट करते हैं कि कर्म आत्मा के साथ ऐसे बने हैं, बंधे हैं, द्रव कर्म नो कर्म भाव कर्म जैसे गाय के गले में रस्सी बंधे ऐसे बंधे हैं, तो ऐसे नहीं बंधे हैं, इतना ही सा खेल नहीं है। राग हाँ द्रव कर्म भी ऐसे नहीं बंधे हैं, सिर्फ नो कर्म हमारे ऐसे बंधे जैसे गाय के गले में रस्सी है। नो कर्म ये चीज है, हम इनसे बंधन लगाए इसलिए ये, नहीं तो ये हमसे नहीं बंधी बिल्कुल भी, हम ही बंधे इनसे, ये रस्सी की तरह।
तो शरीर है,
नोकर्म शरीर भी, और ये सब इस शरीर के नोकर्म क्या है? शरीर तो नोकर्म है ही द्रव कर्म का, लेकिन इस नोकर्म का नोकर्म क्या है? ये है नोकर्म में, नोकर्म में प्रमुखता से शरीर है, फिर नोकर्म के नोकर्म।
आत्मानुभूति तुम्हारा से सिर्फ केवल ज्ञान जिनको होता उन्हीं को हो सकता है?
नहीं, केवल ज्ञान के पहले जो आत्मानुभूति होती वही तो केवल ज्ञान दिलाने में कारण बनती है।
पहले पांचवा
स्थान
से नीचे नहीं
हो सकती, संभव ही नहीं। अगर होगी भी तो राग द्वेष से युक्त होगी, राग द्वेष से रहित नहीं। जब तक बुद्धि पूर्वक राग द्वेष का त्याग नहीं करेगा तब तक
स्थान में होगी।
सातवें में भी दुर्लभ है आज, कहते हैं सातवें भी नहीं होगी। जघन्य शुद्धोपयोग है सातवें में, जघन्य शुद्धोपयोग एक शब्द दे दिया हमने, तो शुद्धोपयोग और कुछ नहीं है। अपनी आत्मानुभूति का राग तीन परिभाषाएं हैं, विषयानुराग अशुभ उपयोग है। उपयोग के तीन भेद कर लें, जो हमने पढ़ा था पहले कि उपयोगात्मक आत्मा है, उपयोग आत्मा की क्वालिटी है। आत्मा सब्सटेंस है तो उपयोग क्या है, वो उसकी क्वालिटी, जिसको हमने कॉन्शियस शब्द भी कहा था अपने समझने के लिए। उपयोग के मायने कॉन्शियस, कॉन्शियस इज द क्वालिटी ऑफ सोल। और कॉन्शियस कितने प्रकार का है, एक दर्शन है, एक ज्ञानात्मक है, तो उपयोग ज्ञान दर्शन आत्मक है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, उपयोग मतलब ज्ञान दर्शन रूप, ये नहीं पढ़ा। चलिए तो कोई बात नहीं, आज उसको पढ़ लेते हैं। शायद उस समय मैंने यही सोच के टच नहीं किया हो कि जब तीनों चीजें बताएंगे तब टच करेंगे। वो उपयोग जो है, जो ज्ञान दर्शन, जो जानने देखने की हमारी योग्यता है, वही हमारा उपयोग है, वही जीव का लक्षण है। जैसे चेतना जीव का लक्षण है, तो चेतना भी दो प्रकार की या तीन प्रकार की अपन ने पढ़ी होगी, कर्म चेतना, कर्म फल चेतना और ज्ञान चेतना। जैसे ये पढ़ी थी, मैं कर्म करता हूँ इस तरह की जो फीलिंग है वो कर्म चेतना है, मैं कर्मों का फल भोगता हूँ इस तरह की चेतना का नाम कर्म फल चेतना है। इन दो का अनुभव है अपने लिए। तीसरी कहते मैं कर्म न कर्म करता हूँ न कर्म फल भोगता हूँ, मैं उससे पृथक हूँ, ये ज्ञान चेतना। ये जब प्राणों से अतिक्रांत हो जाते हैं केवली भगवान, तब उनकी चेतना ज्ञान चेतना है। हम लोगों के लिए तो कर्म चेतना और कर्म फल चेतना है। पाणित मधिकंतानम नानम विंदंति ते जीवा। ज्ञान चेतना को अनुभव करने वाले लोग तो प्राणों से जो अतिक्रांत, 10 प्राणों से जो अपन पढ़ चुके हैं, 5 इंद्री, मन बल काय बल वचन बल श्वासोच्छ्वास और आयु, डिवाइस हो जाएगा। तो उपयोग जो है वो ज्ञान दर्शनात्मक है, और उपयोग जो है वो चेतना का स्वभाव है या जीव का स्वभाव है। ये उपयोग तीन प्रकार का होता है। जो हमारा ज्ञान दर्शन विषय कषाय में जाता है तब इसको अशुभ उपयोग कहते हैं। जब यही धर्मानुराग शुभ उपयोग, जब मेरा ज्ञान दर्शन धर्म से युक्त होता है उन क्षणों में उसे शुभ उपयोग कहते हैं। और जब निरुपराग शुद्ध उपयोग, जब राग द्वेष से रहित होता है तब उसको कहते हैं शुद्धोपयोग। जिसका उपयोग शुद्ध हो गया है मतलब राग द्वेष से रहित हो गया है, वो शुद्ध उपयोग की स्थिति है। तो कहते हैं कि ये नीचे कैसे बनेगी साथ में उन्नीस साल में, तो उसके लिए भी एक कहा गया है कि जब हमने बुद्धिपूर्वक राग द्वेष छोड़ दिया वही शुद्ध उपयोग, पर कर्म के उदय में जो राग द्वेष हो रहा है वो तो 10वें गुण स्थान चलेगा, वहां शुद्ध उपयोग नहीं है, वो शुद्ध उपयोग अभी यहाँ नहीं है। और एक और परिभाषा आती है कि जब शुद्ध की श्रद्धा हो जाती तो उसको भी शुद्ध उपयोग बोलते हैं। ये भी परिभाषा है, शुद्ध की भावना होना या शुद्ध की श्रद्धा होना शुद्ध उपयोग। उसी को खींच खांच करके चौथे गुण स्थान में आप सुनने में आएगा आपके कि चौथे गुण स्थान में शुद्ध उपयोग होता है, उसको वहां खींच के लाए हैं नीचे जबरदस्ती कि शुद्ध की श्रद्धा या शुद्ध की भावना का नाम शुद्ध उपयोग है। नहीं तो पर मजा ही नहीं आएगा, हम तो बैठना तो वहीं पर है, ऊंचे तो पहुंचना नहीं अपने। तो जिसको ऊंचे नहीं पहुंचना है वो ऊंची वाली चीज नीचे खींच करके लाना पड़ेगी, उसको तो लाना पड़ेगा। पर ओरिजिनली जो वो उसकी परिभाषा थी कि शुद्ध ही उपयोग जिसका है वो शुद्ध उपयोग, और शुद्ध के मायने क्या, निरुपराग शुद्ध उपयोग है जो राग द्वेष से रहित हो गया है। तो कहती नहीं ठीक है, शावक भी कुछ क्षणों के लिए राग द्वेष से मुक्त होता, उन क्षणों में आत्मा की अनुभूति हो जाएगी। मुझे बता दो ऐसे कौन से क्षण जिसमें राग द्वेष से मुक्त हो, बुद्धिपूर्वक राग द्वेष ना करे, मुझे बताओ। कोई तो बता दे, बिना राग के कपड़े पहने कैसे आपने, ये तो बता दो। और बिना द्वेष के कपड़े उतार के दूसरे कैसे पहनते हो आप, इतना ही चलो और दूर की तो छोड़ो आप।
सामयिक करते उस समय तो
नहीं,
कितना भी कर ले वे मुनि महाराज के ऊपर सामयिक के समय कपड़ा भी डाल दिया जाए तब भी शुद्धात्मा की अनुभूति होगी, और श्रावक सामयिक के समय सबड़े कपड़ा उतार के फेंक देवे तो भी शुद्धात्मा की अनुभूति नहीं होगी, क्योंकि उन कपड़ों के प्रति राग है अभी पहनना घंटे भर के बाद, ऐसे कैसे उतारे थोड़ी हमेशा को। अगर आप पूछते हैं तो
ये शास्त्रों को प्रमाण देते फिर वो कहां तक
सही, शास्त्रों को प्रमाण तो ऐसा है कि हमसे जौन बात सिद्ध करो, अब तो हम सीख गए जौन बात सिद्ध करवाने बात सिद्ध कर दें, ये सब धरे जौन करवाने, स्त्री प्रक्षाल सिद्ध कर सकता हमें 10 मिनट में, और स्त्री प्रक्षाल नहीं हो सकता जे सिद्ध कर सकता 10 मिनट में, और सचित द्रव्य से पूजा हो थे जहां हम सिद्ध कर सकते धवला से, और सचित द्रव्य से पूजा नहीं हो जहां हम सिद्ध कर सकते वही धवला की 13वीं किताब से, और वही धवला की 4थी किताब से, वो पहली किताब से हम सिद्ध कर सकते कि हाँ सचित पूजा होती, उसमें क्या बात है। शास्त्र की हवाला तो बात बात को देना शुरू किए, पहले अपनी बात तय कर ली, फिर बाद में अपनी बात तय करके अब शास्त्रों की आधी अधूरी चीज जैसे निकाल ली उधर, अब गैर संदर्भ के निकालोगे तो सबसे सिद्ध हो जाएगी, उसमें क्या संदर्भ क्या चल रहा है वो तो कुछ पता ही नहीं। अगर आप पूरा संदर्भ नहीं पढ़े तो 321-22-23 नंबर की गाथा पढ़ करके पक्के नियतिवादी बन जाओगे आप उसी कार्तिक अनुप्रेक्षा की, और अगर 24वीं-25वीं पढ़ लो तो सबरो नियतवाद को नशा उतर जाएगा और सम्यक नियतिवादी हो जाओगे। लेकिन बहुत 21-22-23 नहीं पढ़, 24-25 नहीं पढ़ेंगे, जबकि उसमें क्या है कि सम्यक दृष्टि ऐसा विचार करके और द्रव क्षेत्र काल भाव सापेक्ष मान करके अपना पुरुषार्थ नहीं छोड़ता है, भजन कल मुझे याद आ गया, वो जो जो देखी वीतराग ने सो सो हो सी वीरारे, वो पूरा भजन गाओ और आखिरी पढ़ो उसका कि क्या लिखा। अब वो किसी किताब में मिल जाए तो मिल सकता, मैं पूरा भजन जो है लिख करके रखे था। मैं
टोडरमल जी ने लिखा,
टोडरमल जी ने नहीं लिखा बाबा, टोडरमल जी ज्वाइन करते रहे हैं, ये बुंदा दास जी का है। देखिएगा कल ही मैंने किसी किताब में उसको देखा था, मिल जाए तो बहुत स्पष्ट हो जाए, वो तो ठीक है, लेकिन उसके साथ जो चीज मुझे कहनी है यही तो छह उपशम का काम है, सब याद नहीं रह पाता है। इसमें होना चाहिए मेरा ऐसा सोचना। वही तो ध्यान नहीं आ रही, आशय तो मालूम है उसका पर एग्जैक्ट, पर उसमें से पूरा लाइन आपको बताते तो ज्यादा अच्छा लगता। मेरी कोशिश तो ये थी, पर अब वो देखना मजा की कल ही उसमें किताब में और पलट रहे थे तो उसमें वो रखा हुआ था, आज अब ध्यान नहीं आ रहा है। आशय में ही शांति मानना पड़ेगी। उसमें लिखा है कि जो जो देखी वीतराग ने सो सो होसी वीरारे, होनी तो अनहोनी तो कभू ना होए, काहे हो तधीरा रे, और आखिरी में कहते तू तो अपना पौरुष संभाल और उनका भगवान का नाम ले। दूसरी लाइन इतना सब पढ़ने के बाद कहते कि इतना सब समझ लिया, अब तो तुम अपना पौरुष संभालो और भगवान का नाम दो क्योंकि मृत्यु निकट है। ये उसका अर्थ था, तो वहां पौरुष संभालो तो गायब हो गया, जो जो देखी वीतराग ने सो सो होसी वीरारे, मतलब हाथ पे हाथ धरे बैठी रहो कछु न करो, जो भगवान ने देखो वही हुई है। जब आचरण लेने हुई है सो अपने आप अपधारो, आहे सो आचरण आजे है, और जब मुनि बनने हुई है सो अपने आप बन जे हैं, जब प्रक्रिया शुरू हो गई। अबे क्यों नहीं बन रहे, कहते चार मुनि का उदय है इसलिए मुनि नहीं बन रहे। हाँ वहां कर्म के ऊपर लाद दिया, अभी काल लब्धि नहीं आई हमारी, अबे समय नहीं आओ मुनि बनवे को, जब आ है सो काल लब्धि पे लाद दिया। और वहां कहे हैं कि सब बातें विचार करके सम्यक नियत बात वो है कि द्रव क्षेत्र काल भाव सापेक्ष ही सारी चीज है, मैं ऐसा विचार करके और अपना अंतरंग संभालूं, अंतरंग परिणाम संभालूंगा, वही मेरा पुरुषार्थ है। अंतरंग परिणाम की संभाल के लिए ये बात लिखी थी और यही बात कार्तिक अनुप्रेक्षा में। तो जो आप कह रहे हैं कि हवाला, हवाला तो जिस चीज का आप जैसा देना चाहो उसी के एक श्लोक में दूसरा अर्थ है और अगले वाले श्लोक में दूसरा। जब संदर्भ से रहित कोई चीज कोट की जाती है तो सबसे घातक होती है, इसलिए पीएचडी जो करते हैं उनके रेफरेंस तक देखते हैं वो, कि आपने सही रेफरेंस कोट किया है कि अपनी बात सिद्ध करने के लिए कहीं से रेफरेंस कोट कर दिया है, नहीं तो आपकी पीएचडी नहीं मानी जाएगी। हैं? सही बात कोट करना पड़ेगी जहां से आप, जहां एग्जैक्ट उस संदर्भ में वो कही गई बात है कि नहीं है कि आपने अपने मन से कोट कर दी। यही इसमें भी हर एक चीज का
बोला कि दूसरे लोग भी आत्मानुभूति करते हैं,
करते हैं
मतलब ठीक है
मान लेते हैं मान वो राग द्वेष से युक्त
है, इसको अपन सम्यक आत्म
नहीं, वो आत्मानुभूति है ही नहीं, वो तो आत्मानुभूति का भ्रम है भाई। जैसे कि मुझे अपने किसी के पूछने पर रोक के कि ये सिम्टम्स है, मैं कहता हूँ ऐसे ऐसे ही तो है, वैसा है ये और कुछ नहीं, इसलिए मैंने वो उदाहरण दिया कि कई लोग तो जो स्वयं चिकित्सक बन जाते हैं वे किताब पढ़ पढ़ गए कि हाँ जो भी है जो भी है जो भी हो दवाई अपने दुकान से खरीद लिया खा ले बिना डॉक्टर के बताएं, तो कहते नीम हकीम खतरे जान इसी को तो कहते, और आज भी ऐसा ही है कि दवाई जो है और अपने मैंने मेरे ख्याल से तो आज 50% आदमी बिना डॉक्टर के कंसिडर करे और मेडिकल से, और मेडिकल वाला भी कह देता कि हाँ ये वाली ले लो आप एसी पे चलती
तो आफत ही है एक और कि आप
मैंने मेरे ख्याल से तो आज 50% आदमी बिना डॉक्टर के कंसीडर करे और मेडिकल से, और मेडिकल वाला भी कह देता कि हाँ ये वाली ले लो आप एसी पे चलती
तो आफत ही है एक और कि आप प्रिस्क्रिप्शन लिख के दो, मेडिकल स्टोर वाला बोलता क्या भैया नींद नहीं आती, वो कहना नींद तो आती है नींद दवाई का खड़ा
तो वो कहता रहने दो फिर
डॉक्टर साहब नींद की दवाई ले, तो समझाना मुश्किल है कि नींद के अलावा दूसरी जगह भी काम करती है, तो मेडिकल स्टोर वाले मिसगाइड भी करते हैं। उसमें क्या हो गया उस पेशेंट को, उसकी श्रद्धा खत्म हो गई,
खत्म, और श्रद्धा खत्म हुई तो फिर
उसने सोच लिया कि हो सकता है दवाई मुझे नुकसान कर दे।
अब वो खाली अगर वो खाएगा ना और खाएगा और थोड़ी बहुत नींद आएगी तो कहेगा डॉक्टर साहब नींद की अब तो जरूर आएगी।
काम देती है
यही, यही है भ्रम, इसी को भ्रम बोलते हैं।
ये रोज
वैसा वैसा लगने लगता है।
इवन जो आपने एग्जाम्पल दिया है वो ट्रुथ भी है कि लोग आके बोलते हैं हमने ये पढ़ा था, हमें ये सिम्टम पूरे
पूरे
हैं, हमें लगता है हमको डायबिटीज हो गई, हमको ब्लड प्रेशर हो गया, देखिए हमको प्यास भी लगती है, मुंह भी सूखता है, भूख भी लगती है, कहीं पढ़ लिया किताब में वो आके बात करते हैं।
ऐसे ही इसका मामला
जो आपसे पूछने आए उनको आप ढंग से क्लियर नहीं कर सकते। जैसे कई लोग आपसे पूछने आते हैं महाराज जी ऐसा नहीं ऐसा है, आप उनको भी सही
क्या फायदा
नहीं महाराज जी क्या होता उनके कारण उनके आश्रम जो चार लोग हैं वो भी तो गलत उसमें पड़ जाएंगे।
अगर उनकी इच्छा है समझने की तो समझ सकते
हैं। जैसी आदेश को कैसे समझाते हैं,
बहुत अच्छा वाक्य लिखा है टोडर भगत जी ने, जैसी जे की होनहार वो है वस्तु स्वरूप वाखो वैसा भाषे है। तुम कौन होते उसको सही सही वस्तु स्वरूप बताने वाले, जिसकी जैसी होनहार है बाखों वस्तु स्वरूप वैसा ही भाषे है, उल्टा उल्टा भाषे है, तो अब क्या करें।
तो कई बार गलती हो जाए तो सामने कुछ समझा,
हमने तो अभी तक ये देखा कि आए भी हैं लोग तो समझ भी नहीं आए, समझा भी आए कि महाराज महाराज आपकी कहूंगी मैं गड़बड़ी है, आप समझो जवाब ऐसी है हमारे ख्याल से। तो अभी तक जितने भी आए आए हैं ऐसा नहीं है, अकेले में आए और उन्होंने कबार बंद करके चर्चा भी करी हमसे कि महाराज जा नक्की कर दो जा बात ऐसी है, कहूँ ऐसा तो नहीं कि आप खो कचू उसमें वो हो, तो हमने उनको सच्ची बता भी दी, फिर भी होते गए, अब उतनी अकल तो है नहीं है, फिर भी गए, फिर चार दिनों की उन्होंने चर्चा करी कि महाराज ऐसी कहती अरे कहना जाए ऐसी नहीं ऐसी आए, सो फिर दूसरे नाम लिख के ले आए कि जो आपने कल बताई थी उसमें जी बात कैसी है, सो उसको नक्की कर दो। सब नक्की करवे के बाद में भी फिर उसके बाद वो महाराज लेकिन है तो बात बजोन पहले मने पंच मंजूर बुंदेलखंड में कहते कि पंच मंजूर पंचायत मंजूर मनो नाली उठा इसने बात इसको बुंदेलखंड में जा कहते हैं कि पंचों ने बैठे थे कि भैया जो तुम्हारी जो नाली निकली है जो अपनी इधर से मोड़ो, सो उसने कहा बिठा लो पंच, पंच जो कहे वो निर्णय मंजूर, तो कहती पंच मंजूर पंच की बात मंजूर, मनो भैया देखो ना कि सही से जी मुश्किल कितनी बात।
मैं ये कह सकते हैं कि एक बार जो विचार दिमाग में पहली बार बैठ जाते हैं वो बहुत मुश्किल
नहीं, एक बार जिन विचारों को लेकर हम अपने चित्त में आग्रह निर्मित कर लेते हैं उसके बाद ये
उनको दिक्कत,
चित्त में विचार तो हमारे सैकड़ों हैं लेकिन हम इतने फ्लेक्सिबल हैं कि उन विचारों में से मिथ्या को हटाने तैयार हैं, सम्यक को पुनः हम सुधारने के लिए तैयार नहीं, सुधारने के लिए तैयार नहीं है तो सारे विचार हमारे लिए हानिकारक।
बस इसको ऐसा कहें कि जिसको अपने आप को जानना है उसके जैसे विचार आ रहे हैं वो समझ सकता है कि वैसे
मतलब
एक मोटा मोटा
अपन अपने विचारों को तो खुद जानते हैं
लेकिन कंट्रोल भी नहीं है।
वे सब कर्म के उदय में हो रहे हैं, मैं अपनी तरफ से कोई विचार नहीं कर रहा हूँ, सब कर्म के उदय में हो रहा है, तब मुझे उन विचारों के माध्यम से क्या फील हो रहा है, जैसे विचार है वैसे ना फील होगा, तो फीलिंग अभी मेरी उस शुद्ध तत्व की नहीं है क्योंकि मेरे पास शुद्ध का विचार ही नहीं है, मेरा ओरिजिनल विचार है ही नहीं, डुप्लीकेट है, कहीं से मुझे मालूम पड़ गया है तो वैसा वैसा भ्रम होने लगता है कि हाँ ऐसा विचार है तो फिर मुझे अनुभूति भी होगी।
विचार अपने आप
वो कर्माश्रित है लेकिन जब कर्म से रहित हो करके जो विचार आवे वो कहलाएंगे कि वह वास्तविक फीलिंग है। अभी तो हम जो जान रहे हैं वो ज्ञान हमारा पराश्रित है, इंद्रिय और मन के आश्रित है, लगता स्पष्ट है लेकिन इंद्रिय मन के आश्रित हो तो उसको हमने परोक्ष कहा। इसी तरह इसमें लगाना कि जो कुछ भी अनुभूति होती वो सब हमारी परोक्ष अनुभूति होती है, हमें प्रत्यक्ष अनुभूति नहीं, जैसी केवली भगवान को अनुभूति होती वैसी अनुभूति वो तो कर्मों के क्षय होने पर होती, एक तो कर्मों के थोड़ा सा हटने पर अनुभूति हो रही और एक कर्मों के पूरे क्षय होने पर। इसको बहुत अच्छा उदाहरण देते थे पंडित जी थे जगन मोहन दास जी, सो कहते भैया हम ज्यादा नहीं जाना, हम तो जा जाना कि एक कमरा में बहुत गंदगी थी, अब तुम्हें बैठने तो सो तुमने अपनी उतनी जगह पहुंची और बैठ गए, कैसो लग रहा हो, कहने बहुत अच्छो, मनो बगरो तो सब बस हो कछुआ सर तो आए हो नहीं, आप तो झरी पूछी जगह में बैठे, मनो उतना ही गंदगी डली चारों तरफ, चलो उससे क्या मतलब हमें, हमने इसको दूसरा वो ऐसा उदाहरण देते थे कि आपकी श्रद्धा का क्षेत्र तो साफ सुथरा है यही तो चर्चा चलती कि भैया दर्शन मोहिनी के तो छह उपशम और छह उपशम से सम्यक दर्शन होगा, उस अपने को शुद्ध आत्मा की अनुभूति हो गई, कैसे उतना तो साफ होगा। कहती मनो जो अलग है का दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी एक ही आत्मा में है, गंदगी तो पूरे कमरा में फैली है। मनो तुम अपनी जगह भर झाड़ के बैठी, ऐसे दर्शन मोहिनी तो चली गई, मनो चारित्र मोहिनी का कचरा तो चारों तरफ फैला है। सो अनुभव किस बात का होगा, जैसा कषाय उदय में आएगा वैसा अनुभव होगा। ये बात अलग है कि आपको दर्शन मोहिनी के हटने से अपने आत्मा पे श्रद्धा तो हो गई, शुद्ध आत्मा पे श्रद्धा। सो इतना ही कहो कि दर्शन मोहिनी चले जाने पर मुझे आत्म श्रद्धान हुआ है, चारित्र मोहिनी जाने पर मुझे आत्मा की अनुभूति होगी, कषाय से रहित अनुभूति आत्मा की होगी जब दर्शन। तो कहती अच्छा फिर चर्चा करने वाला क्या कहेगा, कहती अनंतानुबंधी कषाय तो चली गई, उतनी अनुभूति तो हुई है। तो कहती अच्छा जी बताओ कि अंतरंग परिग्रह कितने के, कहती 14 है। एक मिथ्या तो चलो वो तो ठीक है, मानो 13 है बाकी, और 13 तो है कषाय है कि नहीं है, क्रोधमान माया लोभ है। अब क्रोधमान माया लोभ चाहे जोन बेटा वेराइटी की हो, संजुरन वाली भी क्यों ना हो, तब भी आपके लिए आत्मा की अनुभूति नहीं। जब समस्त क्षीर्ण कषाय नाम का गुण स्थान आएगा तब आपको वास्तव में आत्मा की अनुभूति होगी। उस आत्मा की अनुभूति तक ले जाने वाला क्या है, तो कि वेदांतानुबंधी प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान जब हट जाएं, सिर्फ समीचीन रूपेण ज्वलती, कहते जो समीचीन रूप से जलती रहती है लेकिन हमारे आत्मा की अनुभूति को नष्ट नहीं करती, वो संजुलन कषाय। जब संजुलन का संजुलन का उदय जो है सातवें गुण स्थान से शुरू होता, सातवें में क्रोध मान माया और सूक्ष्म लोभ जहां दसवें। और अगर गुण स्थान से होकर फिलोसफी से लगाओ तो कितनी कषायें गई हैं, कितनी अनुभूति होगी, क्या होगी अपने आप के लिए। लेकिन उस क्षेत्र पढ़ा ही नहीं अपन, गोमरसार कर्मकांड जीवकांड तो कोई पढ़ता ही नहीं है, मतलब तो सिर्फ अकेला। और गोमरसार कर्मकांड जीवकांड नहीं पढ़ता ऐसा कहने से, और अब गोमरसार कर्मकांड जीवकांड को संक्षेप आ गए, मैंने जोन जोन बातें अपने से मिलान करें बीभर बातें पढ़ लो, बस पूरे डेप्थ में जाके नहीं पढ़ो, क्या तो समय ही नहीं है अपने पास। ये प्रपंच खिलाने समय है, तीन तीन बार बैठ के बे बे चीजें घोक घोक बे को अब ऐसी भाषा बोलता
है। जैसे कोई पंडित जी वगैरह पढ़ाने
कुल पढ़ाने, अभी तो अगर कोई से आपको पढ़ना है तो रतनलाल पंडित जी हैं, कर्मकांड जीवकांड पढ़ना रतन, इनसे अलावा इनके अलावा कोई कर्मकांड जीवकांड का मास्टर नहीं है अभी, हम तो अभी पढ़ के आए पिछले साल इंदौर उसमें तुकोगंज में उदासीन आश्रम। अरे ऐसी रटी हुई है हम तो भूल जाते हैं, हम तो एक साल पूरा चार महीना पढ़ने के बाद भी याद नहीं रहा हमें, बस समझ में आ गया कि हाँ ऐसा है, पर याद वाद नहीं, गिनाओ कि कौन से कर्म की प्रकृति कहाँ तक चलती, कहाँ उसकी विच्छित्ति होती, कहाँ तक उसका उदय है, कहाँ तक उसका बंध है, कहाँ तक उसकी सत्ता है। ये सब बंध उदय सत्य और विच्छुत्ति उनको ऐसी मुखाग्र है, दसवें गुण स्थान में कितनी प्रकृतियां हैं, कितनी की सत्ता, कितने का उदय है, कितने का बंध है, जवान पर तब परफेक्टनेस आती है उसमें। अरे मेरे तो इतनी कषायों का उदय है, मैं कैसे कह दूं कि मुझे अभी कितने कर्मों का बंध हो रहा है मुझे ऐसा। तो ये एक नया विषय था हल्का सा, अपने उसको अचानक ही मुझे याद आया कि अध्यात्म का विषय भी
से कभी कभी अपन चर्चा कर देते हैं कि आत्मा से जानना और देखना थोड़ा सा
कितनी देर और करना
चढ़ी गया है। इससे भी अपन काफी जगह बोला है कि हम आत्मा से जानना है और देखना, इसको थोड़ा सा
मतलब जो जानने देखने वाला है वो आत्मा है, वही आत्मा है। ये जानता देखता नहीं है इसलिए अजीब है, जो जानता देखता है वही जीव है,
वही आत्मा
है, वो उससे कोई अलग चीज नहीं है। जानना देखना उसकी क्वालिटी है, जैसे कि अग्नि अपनी उष्णता के द्वारा जलाती है तो उष्णता नाम की कोई चीज अलग हो और अग्नि नाम की चीज अलग हो नहीं, ये तो कहने में आ रहा है जो उष्णता है वही अग्नि है, जो अग्नि है वही उष्णता है, लेकिन अग्नि गुणी है और उष्णता उसका गुण है। इसी तरह से आत्मा तो गुणी है और उसका गुण है जानना और उसकी क्वालिटी,
मतलब फिर हम अनुभव कर रहे हैं उसका आत्मा, अगर हम उसको जान और देख पा रहे हैं
किस रूप में कर रहे हैं, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या दर्शन के रूप में कर रहे हैं। अभी हमारा ज्ञान दर्शन कर्माश्रित है, वही तो मैं कह रहा था कि जितना पर्दा हटा ज्ञान का उतना अनुभव हो रहा, परोक्ष ज्ञान है, पूरा हटने पर जो ज्ञान होता है वास्तव में तो वो ज्ञान मेरा स्वभाव है, ये छायुप समय ज्ञान मेरा स्वभाव नहीं, शायद ज्ञान मेरा स्वभाव, उसमें जो मुझे जानकारी होगी जो केवली का ज्ञान है वो ज्ञान सच्चा ज्ञान है, ये बाकी तो ज्ञान कर्मों के हटने से कर्माश्रित है, तो पराश्रित हो गया कि नहीं।
जानना देखना कर्माश्रित
कर्माश्रित है, और वो जो जानना देखना ओरिजिनल है वो हमारी क्वालिटी है,
केवल
वो
कर्माश्रित,
वो केवल ज्ञान और केवल दर्शन, वो कर्माश्रित
नहीं, कर्म के आश्रित नहीं
नहीं है।
ये पहले अपन ने डेफिनेशन,
प्रत्यक्ष है वो सकल प्रत्यक्ष है, मति ज्ञान मन है परे ज्ञान और अवधि ज्ञान, ये सकल प्रत्यक्ष नहीं, देश प्रत्यक्ष है, इनमें भी वो अनुभूति नहीं है।
इंद्रिय आश्रित हो गया ना, ये देखना और जानना आत्मा,
इंद्रियां किसकी है, लब्ध उपयोग भाव इंद्रियम, और इंद्री कौन सी दो प्रकार की होती है, निवृत्त्युपकरणी द्रव्येन्द्रियम, लब्ध उपयोग भाव इंद्रियम, ये जो रचना हुई है हैं बाहर में और भीतर में जो इसको गोलक इत्यादि है, ये तो निवृत्ति और उपकरण है, सो ये मेरे से पृथक है, लेकिन इसमें जो मुझे देखने की क्षमता जो छह उपसम और लब्धि मिली हुई है, और जब मैं उसका उपयोग करता हूँ, वो कौन बैठा है भीतर, वो उसकी है,
ये नहीं है तो खिड़की
यही है,
खिड़की आता कहाँ,
उसके भीतर बैठा हुआ लब्धि, इसको लब्धि कहा था अपन ने, वो छह उपसम और उपयोग जो देखने वाला है वो कौन है, तो आत्मा ही है, इसलिए द्रव्य इंद्री तो आत्मा की है, और ये बाह्य इंद्री जो है वो पुद्गल कह लो तो कह,
जो अभी हम देख रहे जान रहे वो सत्य नहीं है, ऐसा हम अभी मान के नहीं चल,
सही है, वो सच्चाई की तरफ कदम है, सच्चाई
कदम,
सच्चाई का ज्ञान होना और सच्चाई की अनुभूति होना, देखो
वो अनुभूति सब
समझ, सच कहना और सच होना दोनों में कितना, बताइए मैं सच कह पा रहा हूँ लेकिन मैं सच हूँ,
अच्छा। और 17 अक्टूबर का प्रवचन शुरू होता है,
किसी ने ली या नहीं ली, पर हमारे सिद्धांत जो बनाए गए थे वो कितने नैतिक हैं, मैंने कहना चाहिए नैतिक उत्थान के लिए समाज के जितने भी नियम हैं वो सब नैतिक उत्थान करने वाले तो हैं, और एक विचारों की जो सहिष्णुता देते हैं तो मेरा सोचना कि इस पे भी, ये तो आप अपने आप करिएगा, पर ये भी एक टॉपिक है कि अपने को सोचना चाहिए कि हमारे ये सब सिद्धांत इतने एप्लीकेबल हैं और इनसे क्या बेनिफिट जनरल ह्यूमन को मिल सकता है। ठीक है, जो जैन कुल में पैदा हुआ है वो तो इनको फॉलो करता ही है, वो भी पूरा फुली फॉलो नहीं करता है, पर हाँ, और लोग को हम किस तरह इंटरप्रेट करें कि वे भी इस चीज को फॉलो करें, इस पर भी विचार। भारतीय संस्कृति का नहीं, भारतीय संस्कृति को जैन अवदान, ऐसा एक चैप्टर पढ़ रहा था, मुझे लगा कि हाँ इस पे भी अपने दिमाग में अपनी, नहीं तो क्या होता कई बार कि हमें ऐसा लगने लगता है, सामान्य जैनों को लगता है कि हम देश के लिए कुछ नहीं कर रहे, और दूसरे लोगों से पूछो तो वो भी यही कहते हैं, जैसे अभी शिखर जी में इस बात का विवाद है कि वहाँ के लोग असंतुष्ट हैं, वो ये कहते हैं कि जैनियों के पास इतना पैसा है, अपने मंदिर बनाते हैं, मूर्ति लाते हैं, हम वहाँ के रहने वाले लोगों के लिए तो कुछ भी नहीं करते, वो हमारे लिए एक हॉस्पिटल भी नहीं खोलते हैं, वो हमारे लिए पानी पीने के लिए एक प्याऊ तक नहीं खोलते हैं, तो हम उनकी मदद क्यों करें, जब उन पर कोई आक्रमण हो शिखर जी में, जब अनसेफ हो तो हम क्यों मदद करें, वो हमारी कौन सी मदद करते हैं उस जगह पर, हमें क्या उनको क्या हमारे धर्म में ऐसी कोई चीज थी जो हमने मिस कर दी है कि जिसके माध्यम से हम सबको संतुष्ट करते थे और फिर अपना धर्म करते थे, हमारे अवदान हैं लोगों के लिए पर किस तरह देना चाहिए, इस पर भी मेरे ख्याल
कहीं से मिस तो हुआ है,
कहीं ना कहीं
जब इस तरह की फीलिंग है तो मिस तो कुछ ना कुछ हुआ
है, इसलिए इस तरह का है जो कोऑपरेशन होना चाहिए था वो नहीं है। आज अपन ने आपस में ही देखें इस चीज को कि जेंस के प्रति जो नॉन जेंस में एक ईर्ष्या है या विद्वेष है, समय समय पर वो भले ही दबा रहे किसी वजह से, लेकिन इंटेलेक्चुअल्स को छोड़ दें, उनके भीतर नहीं है इस तरह का, लेकिन जो जो आम आदमी कॉमन मैन है, कॉमन मैन के अंदर हमने कोई इस तरह की चीज दी नहीं, हमने कभी उसको अपने अपने फंडामेंटल्स बता करके और अपने जीवन में उन सबको ला करके उसे कोई लाभ नहीं पहुंचाया, इस पर भी विचार होना चाहिए, इस पर तो स्वतः ही अपन जो भी है वो विचार कर सकते हैं। ऐसी चीजें सोचिएगा कि क्या क्या हम देते हैं हम अपने आसपास अपने विचारों के द्वारा।
पूरी फिलॉसफी जो है वो इंडिविजुअल पे केंद्रित है, मतलब आत्म कल्याण की तरफ, तो उसके साथ साथ जो समाज और दूसरे लोग हैं, एनवायरमेंट है, उसकी तरफ ध्यान कम है।
ध्यान कम है जब, इसका मतलब ये है कि हमने ठीक ठीक समझा नहीं, जो जो चीज आत्म कल्याण करती है वो लोक कल्याण नहीं कर सकती क्या? हमें ये भी विचार करना चाहिए, जिस चीज से आत्म कल्याण होता है उससे लोक कल्याण तो होना ही चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति लोक का अकल्याण करता है वो लोक का तो बाद में करता है, अपना पहले करता है अकल्याण। तो फिर इसी तरह से जो अपना कल्याण करता है वो अपना तो करता ही है, पर उसके साथ साथ लोक का भी होना चाहिए, क्योंकि उसने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया, ये सबसे बड़ी चीज है। मैंने आपको सुख नहीं पहुंचा पाया, लेकिन मैंने आपको दुख भी पहुंचाने की कोई कोशिश नहीं की। ये हमें अपने भीतर इस चीज को डेवलप तो करना पड़ेगा, और आसपास के अपने वातावरण में इस चीज को फैलाना पड़ेगा।
महाराज जी, उससे शायद संतुष्टि नहीं होगी, क्योंकि
चलिए दूसरा स्टेप है, पहला स्टेप तो यही है कि एक जो आत्म कल्याण करने वाला है वो दूसरे के अकल्याण के लिए कुछ भी नहीं करता है, लेकिन वो दूसरे के कल्याण के लिए भी समय समय पर कुछ करता है। इस बारे में हमें विचार करना चाहिए, हमने कोई व्रत लिया तो उसके बेनिफिट्स हमें तो होते ही, दूसरे के भी होना चाहिए था। कैसे होंगे? तो डोनेशन से होंगे। हमने अपने को लिमिटेड किया है तो हमारे लिमिट से बाहर जो चीजें होंगी उन सबको हमें दूसरे को देना चाहिए।
अब उसमें महाराज जी जो सामाजिक दिक्कत है, जो मैंने अनुभव की है वो ये है कि हम मंदिर में कितना भी पैसा खर्च करने के लिए उपलब्ध रहते हैं, लेकिन सामाजिक कार्यों में, शिक्षण संस्थाओं में, अस्पतालों में,
एक पॉइंट ये है, ठीक है, जो इस तरह की मानसिकता है उसको हम कभी सोचें कि क्या उपाय है कि इस मानसिकता को बदला जाए। हम अपने से क्यों नहीं शुरू करें, क्यों अपेक्षा रखें दूसरे से? हमारे मन में इस तरह की अगर अवधारणा है, विचार है कि नहीं, हमें तो सिर्फ धर्मायतनों में ही अपना पैसा लगाना चाहिए और कहीं नहीं लगाना चाहिए, तो हम विचार करें कि क्या ये पूरा है हमारा विचार,
मतलब प्रायोरिटीज तो थोड़ी सी फिक्स होना चाहिए उसमें से।
शुरुआत के लिए तो स्वयं से शुरू करना पड़ेगा।
कोई समझे
अच्छे स्कूल खोले, अच्छे विद्यालय खोले,
नहीं इस सब की भी कोई जरूरत नहीं, ये तो सब फिर मैनेज करना पड़ेगा। नहीं, हम अपने व्यक्तिगत तौर पर आसपास के लोगों को क्या दे सकते हैं, बहुत बड़े रूप में तो मैं नहीं जाऊंगा। मैं अपने घर के आसपास जो असुविधाएं हैं लोगों की, क्या वो दूर कर सकता हूँ?
हर आदमी वैसा सोच ले तो
हाँ, हर आदमी ऐसा सोचे,
अच्छी बुक्स दे, अच्छी सलाह दे लोगों को,
उससे भी नहीं बनेगा। ये तो शुरू होगा तन, धन, फिर लास्ट में मन। मन से तो बहुत सारा होता है और उसके रिजल्ट्स नहीं आते हैं। शरीर से कुछ ना कुछ सेवा करनी पड़ेगी और धन के द्वारा सेवा करनी पड़ेगी, दोनों दिखाई पड़ने वाली सेवाएं हैं। मैं आपको इसलिए ये बात उठा रहा हूँ कि एक मुझे बहुत पहले एक एग्जांपल मिला था, मैं वो हमेशा देता हूँ कि फैमिली का, शायद हमारे जीवन में हम अपने आसपास कभी ऐसा करें, शायद ये मान के चल रहा हूँ कि किस तरह हम लोगों को अपने जीवन से अवदान दे सकते हैं, जैन धर्म की समझ उनको दे सकते हैं, अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। एक फैमिली मिली थी जिसमें आचार्य जी के पास आए थे, वो 1980 में, तो उस समय उन्होंने कहा कि हम लोग व्रत लेना चाहते हैं। अब वो दोनों हैं और उनके बच्चे हैं, तीन बिटिया है, दो बेटे हैं, तो सब इतने बड़े हो गए, 7, 9, 10, 12 साल के, कि अपनी समझते हैं कि क्या करना क्या नहीं करना। वो बैठे हैं, सब मैं सुन रहा हूँ, वहीं बैठे हुए आचार्य जी से क्या बात करते हैं। तो उन्होंने कहा नियम दे दीजिएगा, तो आचार्य ने कहा ले लीजिएगा कोई। बोले तो पहले हम अपने नियम बता दें कि ये हम लोग लिए हैं, फिर उसके बाद आप बताइएगा, जैसा तो हम वैसा कर लेंगे। तो उन्होंने अपनी डायरी निकाल ली, सब बताइए। तो पहले नंबर तो मुझे आश्चर्य ही हुआ कि नियम तो थोड़े बहुत लिए होंगे, लेकिन वो तो डायरी मेंटेन कर रहे हैं, इसका मतलब है कि समथिंग इज एक्स्ट्रा इनमें। तो मैं और अलर्ट होकर सुनने लगा। उन्होंने बताया जो चीज, तो आचार्य भी दंग रह गया और उन्होंने कहा कि मैं आपको क्या नियम दूं। उनके सुबह की प्रार्थना फिक्स, प्रार्थना का समय निश्चित है, उतने बजे सारे फैमिली मेंबर्स एक जगह कमरे में इकट्ठे होंगे, ये पहला नियम है जिसमें उन्हें मेरी भावना पढ़नी है, नमोकार करें। फिर उसके बाद सोना है किसी को तो सो जाओ, कोई बात नहीं, 5 बजे उठ गए हैं आप, हो सकता है कि 1 बजे सोए हो आप, 5 बजे तो आपको प्रार्थना में तो आना पड़ेगा। उसके बाद आपका मन और है तो आप घंटे पर सो जाइए, आपकी लाइफ 6 बजे 7 बजे शुरू होना है तो आप शुरू करिएगा, पर वो निश्चित है। शाम को कितना भी आप कहीं हो पर शाम को खाने की टेबल पर आपको आना, शाम की टेबल जो 6:30 बजे मौसम के हिसाब से लगेगी उस पर सब उपस्थित होंगे। ये 2 नियम हो गए। क्या करते हैं इससे, आपको आपने किस तरह रेगुलेट किया है इसको, तो बोले कुछ नहीं, शाम की टेबल पर खाने बैठते हैं तो उसी के साथ कल का पूरा प्लान कर लेते हैं और नियम ले लेते हैं कि कल क्या चीज खाएंगे, कौन क्या खाएगा। छोटे बेटे से शुरुआत होती है, अगर छोटे बेटे ने कहा कि मेरी चॉइस की ये 2 सब्जियां हैं तो फिर उससे बड़ा वाला अब इतना हैबिचुअल हो गया, वो कहता है ये भी मेरी चॉइस है, तीसरा वाला कहता है ये भी मेरी चॉइस ही है, यही चलने दे। तो फादर मदर को कुछ नहीं करना है, वे वो दोनों चीजें ही बनाते हैं ताकि अगले दिन कोई किसी को विवाद ना हो कि मेरे मन की नहीं बनी या मन में कोई चीज ना रह जाए। बताइए, अगर किसी को खाने की टेबल पर उसने कम खाना खाया है तो ये देना पड़ेगा, उसका कॉज देना पड़ेगा कि कम खाने का कारण क्या, या तो आपको तकलीफ है या फिर आपने कहीं कुछ खाया है तो कहाँ खाया है। तो अपने मित्र के यहाँ गए थे, ठीक, मालूम पड़ गया कि आप अपने मित्र के यहाँ जाते हैं और क्या लगातार जाते हैं, ये लगातार खाते हैं, बेईमानी नहीं कर सकते आप। और अगर तबीयत खराब है तो फिर आपको वॉच किया जाएगा, आश्चर्य करेंगे आप कि ऐसी भी फैमिली हो सकती है इतनी वेल मेंटेन्ड शटल, और वो बताते हैं पूरा कि हाँ हमको थोड़ी सर्दी है, तो फिर आपको प्रिकॉशंस लेना चाहिए, कल आप जो है दूध या कि घी वाली चीज नहीं लेंगे तो ठीक है, आज घी और दूध की कल कोई, अब जब घी दूध आप नहीं लेंगे, छोटा वाला नहीं लेगा, तो पूरे फैमिली मेंबर्स तय कर लेते हैं कि कल घी दूध वाली कोई चीज ही मत बनाओ, नहीं तो उसका लालच डोलेगा मन और खराब होगा, एक दिन सब नहीं खाएंगे घी दूध, तो ऐसा कौन सा क्या बिगड़ जाए। ऐसा करके वो अपनी डायरी मेंटेन करते हैं डेली। और सबसे बड़ी चीज कि इतना सब तो अपने लिए करते हैं वे, और समाज सेवा का आधे घंटे उनका फिक्स है। जो सबसे कीमती चीज मुझे लगी वो ये, वे समाज सेवा करते हैं, 5 के 5 सदस्य। बोले शुरू शुरू में कॉलोनी में थोड़ी दिक्कत हुई, फिर हमने कहा कि भाई हमारा तो नियम है, आपको मदद लेनी चाहिए हमारी। तो अजय जी ने कहा क्या करते हैं आप समाज सेवा, तो कुछ नहीं, हमारे घर से ये हैं जीवन साथी, वो चली जाती हैं, किसी के बर्तन मलना है तो बर्तन मल देती हैं, झाड़ू लगाना है तो पोंछा लगाना है तो पोंछा लगा देती। पहले लोगों ने थोड़ा मना करा कि आप इतनी बड़ी हो रही है, उन्होंने कहा इससे क्या मतलब, मेरे घर का काम ही आपका, इससे क्या, मुझे तो करना है। तो आधे घंटे आप कोई भी काम बता दीजिए, हम आपका कर देंगे, और मैं मार्केट चले जाता हूँ, लोगों का लोग मुझ पर विश्वास करते हैं, पैसा दे देते हैं, मैं उनका सामान खरीद के ले आता हूँ जो भी उनको मार्केटिंग करवानी है मेरे से। तो अलग अलग घरों में चले जाता हूँ कि आज कोई काम मेरे लिए है क्या, 5 से 5:30, या वो जो बता देते हैं कि आप कल आइएगा, मैं आपको काम, लेकिन इतने टाइम जो मेरा अपना टाइम है उसी टाइम, और इतना। और छोटे बच्चे क्या करते हैं, अपने से छोटे बच्चों को खिला लेते हैं आधे घंटे के लिए, उस फैमिली के लोगों को निश्चिंत कर देते हैं कि आप निश्चिंत रहिए, आपके बेटे को हम संभाले आ देंगे, फिर आपको दे जाएंगे, हमारा आधा घंटा पूरा होगा। ये संस्कार किसने डाले, और वहां वो बताते हैं कि अब आप उस जैन फैमिली को जितने लोग हैं वो कितना चाहते हैं और उनके सुख दुख में हमेशा तैयार खड़े हैं। इसके मायने हैं कि हमने ये चीज भुला दी है, अपने धर्म ध्यान के साथ हमारे पास किसी दूसरे के लिए, दूसरे को समझाने का वक्त तो है लेकिन दूसरे की मदद करने का वक्त नहीं है। समझाने से कुछ नहीं होता, कि आप दूसरे के पास चले गए और उसके सुख दुख में उसको समझाना शुरू कर दिया कि देखिए वो तो सभी के जीवन में आता है और यूं त्यों, नहीं, आप तो ये बताइए कि आपकी पीड़ा क्या है, मैं क्या दूर कर कुछ कर सकता हूं मैं। ये चीज डेवलप नहीं, इस पर भी जो है आने वाले लोगों को हमें सचेत करना चाहिए, अपने आसपास इस तरह की ग्रुप बनना चाहिए, भले ही मेजोरिटी नहीं होगी लेकिन हमारे पास 8-5 लोग भी हैं, 2 लोग भी हैं इस तरह के, तो वे 2 लोग जैन धर्म की ज्यादा प्रभावना कर रहे हैं, वनस्पत खूब पूजा पाठ और प्रक्षाल और धर्म चर्चा तत्व चर्चा करने वाले लोग जैन धर्म की प्रभावना न कर पा रहे होंगे जितनी वो कर रहे होंगे। थोड़ा थोड़ा आप जो है ना एडजस्ट होइएगा। आप पूछिए मत, पूछने से क्या होगा, ढेर सारी चीजें हैं आने वाली दीपावली पर, पूछ लीजिएगा दीपावली पर क्या करें तो मैं बता देता हूँ। बहुत सामान्य सी चीज आ चुकी आ गई, वैसे जनरल पब्लिक में कहूंगा, अगर मन हो जाएगा तो कहूंगा। हम लोगों ने एक प्रयोग किया था 86 में, उसके बाद तो एक आध दो जगह हुआ व्यक्तिगत रूप से, व्यक्तिगत ही होती हैं ये चीजें, जनरल नहीं होती। तो 10 लोगों को तैयार किया था, उन्होंने कहा कि दीपावली कोई अच्छे ढंग से मनाने चाहते हैं हम, और कुछ हट करके। मुझे थोड़ा सा डिस्टर्ब होता, आप यहाँ आइए ना, इधर बैठिए, हाँ इधर आइए आप, ये दक्षिण खिड़की है, ये ऑब्स्टेकल पैदा करती है मेरे कंसंट्रेशन में। अब वो खोलना जरूरी है इस वजह से, क्योंकि वहाँ खड़े होना, दोनों सेव करके रखे हूँ पश्चिम और दक्षिण, उसके बिना तो जो है बहुत मुश्किल होती, नहीं तो बैठना मुश्किल हो जाए। एक तो दक्षिण गेट है पूरी धर्मशाला का, तो वैसे भी उससे अच्छे इफेक्ट नहीं रहेंगे। खैर आप वहीं पर बैठ जाए ना, थोड़ा सा एडजस्ट होकर के, अच्छा इधर आ जाए, इधर से कोई शिफ्ट हो जाओ, आप इधर से शिफ्ट हो, इधर आ जाओ, उसको सुनाई नहीं,
आप आ जाए उसको भेज रहे उधर।
एक व्यक्ति इसमें से नहीं उठ सकता वहाँ के लिए,
उनको बोल दें। हाँ
तो मैं क्या चीज कह रहा था,
दीपावली,
दीपावली पर 10 लोगों को तैयार किया, 10 लोगों की मानसिकता बन गई, बनाई तो थी 2 लोगों की, लेकिन 2 के साथ जैसे उनको मालूम पड़ा तो उनने भी स्वीकार कर लिया। अपन देखें कि अपने भीतर क्या ऐसी मानसिकता बनती है, दीपावली नए ढंग से मनानी है। तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना ऐसा करें कि जो व्यक्ति दीपक नहीं खरीद सकता, जो व्यक्ति बाती और तेल नहीं खरीद सकता, ऐसा भी तो होगा कोई ना कोई व्यक्ति इस छोटे से गाँव में। मैंने कहा खोजो आप जिसको कि कोई भिखारी होगा वैसा, खाने पीने तक का नहीं होगा, वो क्या दीपक जलाएगा, वो क्या दीपावली मनाएगा, उसका आगे पीछे कौन है, अकेला अगर पड़ा होगा तो कौन होगा उसका। उन्होंने कहा ये तो बात बहुत सही है, हम अपनी दीपावली तो मना लेते हैं लेकिन किसी ने मनाई है आज की नहीं मनाई, ये तो हम देखते नहीं। वो खोज में लग गए 15 दिन पहले से, और पानी की टंकी के नीचे पड़े रहते हैं तो वॉच किया कि ये पूरी रात यहीं रहते हैं या कहीं जाते हैं, तो पता किया कि एक दो लोगों का तो घर था, तो घर मतलब टूटा फूटा, वहां जाके देखा तो क्या है, चिथड़े पड़े हुए हैं और वहीं पर वो रहता है और कोई आगे पीछे कोई नहीं है। खाने पीने का क्या है, लोगों से पूछा आसपास, सब तहकीकात करके 8-10 दिन तक वाच करते रहे कि इसको वाकई जरूरत है या कि नहीं। ऐसा करने के बाद 10 लोगों ने 10 भिखारी तय कर लिए, जो अधिक थे, वैसे तो थे 50, लेकिन उसमें से उन्हें लगा कि ये 10 अपना अपना एक तय कर लिया। अब क्या करना महाराज, मैंने कहा कुछ नहीं, अब एक ठो दीपक लेना है, तेल लेना है, बाती लेना है, माचिस लेना है, और कुछ नहीं करना, उनके पास जाकर के वे जहाँ रहते हैं वहाँ पर आपको दीप धरना है और कहना है कि आज आपकी भी दिवाली आपको मुबारक हो, शुभकामनाएं देनी है उनको कि आप दीपावली इसी तरह से आपके जीवन में रोशनी हो। अब अकेले इससे तो काम नहीं चलेगा, तो अगर आप चाहें तो खाने पीने की चीज दे सकते हैं, ठंड आने वाली है आप कपड़े दे सकते हैं, तो सबने जो है कंबल और पैकेट एक एक तय करा कुल मिला करके, और 50-75 रुपए का उनका सारा एक एक व्यक्ति का हुआ। 86 की बात है इसलिए कह रहा हूँ, आज शायद हो सकता है कि बहुत ज्यादा हो जाए, हाँ तो उतना हुआ। और अब इसका लेकिन अनुभव तो था नहीं कि क्या होगा कैसा होगा, गए सब वापिस लौट करके आए तब उन्होंने कहा कि हमने तो जीवन में बहुत दीपावली मनाई लेकिन ऐसी दीपावली अब दूसरी बार भी नहीं मना पाएंगे शायद, क्योंकि पहली बार जब उनके पास पहुंचे और दीपक रखा और शुभकामनाएं कहीं और ये चीज जैसे ही उनको दी तो वो तो मतलब सबका अलग अलग था लेकिन सबने एक जैसी रिप्लाई दी कि वो कहते थे कि क्या आप देवता हैं, क्या आप फरिश्ते हैं, आप इस जमीन के हैं, ऐसा पूछते थे, आप इसी जमीन के हैं, आपको ये किसने कहा, हमने तो अपनी जिंदगी में जब से पैदा हुए हैं कभी दीपक ही नहीं जलाया, लोगों के जलते दीपक जरूर देखा है और उसी में हमने खुशी मान ली है, बस अपना दीप तो हमने कभी नहीं, आपने ये मेरे लिए और ये खाने के लिए दिया, कंबल दिया खाने के लिए, उसमें से उनको बहुत फोर्स करा कि आप थोड़ा खा लीजिए हमारे सामने हमको अच्छा लगेगा, तो थोड़ा सा खा लिया फिर रख लिया, बोले आप खा लीजिएगा ये, बोले मालिक महीने भर चलेगा, एक पैकेट है बहुत चलेगा, बोले हम लोगों को उस दिन लगा कि इतना एक एक पैकेट तो हम पंगत बिठाल करके वेस्ट फेंक देते हैं, जितना पैकेट हम उनको लेके गए थे पाँच दस रुपए का, वो कह रहे हैं कि मालिक महीने भर तक चलेगा, थोड़ा थोड़ा खा लेंगे, पानी पी लेंगे, बस कोई और कुछ देगा तक उसको, इसको तो रखे रहेंगे। दीपावली एक दिन नहीं, महीने भर मनाएंगे ये दीपावली। और पैरों पर गिर पड़े, कोई पैरों पर गिर पड़े, कोई रोने लगे एकदम, तब उनको लगा कि नहीं ऐसे लोग भी हैं। अब उनको अगर ये कहें कि, उनको जब कहा कि हमारे महाराज ने ये कहा है और हमारा धर्म ये है, हम अपने धर्म का प्रचार नहीं कर रहे पर हमें इस तरह सलाह दी थी, अब उनके भीतर अगर उस समय ये लगे कि सच्चा धर्म तो यही है, सम्यक दर्शन हो जाएगा। इतना ही सा खेल है उसी क्षण कि वो जो रोज हम देखते हैं कि वो जो साधु जी निकलते हैं, वो जो नग्न, हम तो सोच रहे थे अरे ये तो ऐसे ही है सब, ये भी खाना जुटाने के लिए जाए जाते होंगे, अरे लेकिन ये सच्चे हैं। शायद मुनि महाराज जी भी वो नहीं कर पाए होंगे जो आपने वहां जाकर के उनकी इमेज उसके भीतर बना दी है और उसको सम्यक दर्शन करवा दिया। इस तरफ किसी का रुझान नहीं, ये एकदम अछूता पड़ा हुआ क्षेत्र है। कभी आपने सोचा? अभी इस बीच भी एक डॉक्टर आई थी और उसने मुझे कहा यहीं पर है, तो उसने कहा कि हम तो अभी इंटर्नशिप में हैं और एक दिन जो है एक अम्मा जो है अपने बेटे को चरणों में रख करके मेरे गिरी हुई है कि बचा लीजिएगा, 250 रुपए का इंजेक्शन आता है, मेरे पास तो इंजेक्शन लाने के लिए पैसे ही नहीं, 250 रुपए का इंजेक्शन, इसको लगवाना, आप कहीं से व्यवस्था करवा दीजिएगा, बाकी हम कर लेंगे। और उसको कितने इंजेक्शन लगना थे बता रही थी वो कि अब बोले हम क्या करें, इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, वो तो मुस्कुराते हुए निकल जाते हैं और हम जो है अभी कुछ भी नहीं कर रहे हैं, फिर भी हम अब हम वो क्या करे बताइए, डॉक्टर बनने को है, अब उसके भीतर दया भी आए तो क्या करे, किस किस को 250-250 रुपए का इंजेक्शन लगाएंगे बताइए, उसके पास कोई फंड हो, कुछ हो इस तरह का, ये अपने पास कुछ भी नहीं है। तो मैं तब से सोच रहा हूँ कि अपन इतनी सारी बातें करते हैं, एक अपने पास एक फंड नहीं है जिसमें कि हमारे जैन डॉक्टर्स, अगर कोई ऐसा पेशेंट आ जाता है और उनकी क्षमता नहीं है तो वो उस फंड से लेकर के उसे तुरंत ऐड दें कि आप आगे बढ़ जाएंगे। एक आध जगह धोखा भी हो जाएगा कि बेईमान आदमी भी ले जाएगा तो ले जाए, लेकिन इससे उसके भीतर क्या इम्प्रेशन बनेगा, उसके भीतर जैन धर्म के प्रति कितनी अगाढ़ श्रद्धा होगी, कम से कम श्रद्धा नहीं होगी तो विरोध तो नहीं करेगा वो कहीं खड़े होकर के कि जैनियों में ऐसा होता नहीं, जैनियों में भी ऐसा। और वो तो सब छोड़िए, हमारे भीतर कितनी निर्मलता आएगी कि हम किसी की मदद कर सके।
हमारे का एक उद्देश्य ये भी है महाराज जी, जो अभी यहाँ जो ट्रस्ट बन रहा है, लेकिन उसमें केवल वो जैन का है कि जैन अगर कोई ऐसा हो तो उसको एक सार्वजनिक कर सकते हैं,
सार्वजनिक ही होना चाहिए, जैन तो है ही सार्वजनिक, और उसमें हमारे पास इतनी राशि होना चाहिए कि हम आसानी से मदद कर सकें।
महाराज जी जहाँ 10-12 करोड़ की है तो मेरे को नहीं लगता कि पैसे का कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम होना चाहिए,
लेकिन भावना का भी होना चाहिए ना उसमें पुट है, पैसा तो है, हो सकता है पैसा तो कई लोगों के पास है लेकिन जिनके पास भावना है उनके पास वो नहीं है, और जिनके पास पैसा है उनके पास भावना नहीं है। ये कुछ इस तरह का भी अपन अपने बीच जो अपने विचार के हैं, मैं सोचता हूँ
ये कल जो चर्चा होगी उसमें भी अपन इसकी चर्चा कर सकते हैं, कल जब सुरेश जी आएंगे तो वन ऑफ द पॉइंट्स
इस तरह की चीज भी एक भले ही थोड़े से लोग उसको रेगुलेट करें, मैं तो सोचता हूँ थोड़े लोग, और वो भी जो इस चीज की डेप्थ में समझते हैं।
दूसरा भी आपके पास आए ना शिक्षा का स्कॉलरशिप, उसमें वो स्कॉलरशिप का तो दिया है पर जैसा आप कह रहे हैं मेडिकल के बारे में वैसा नहीं है।
स्कॉलरशिप ढेर लोग दे रहे हैं पूरे देश में, ढेर लोग
ठीक है,
एट द मोमेंट जो है
इमीडिएट हेल्प,
हाँ इमीडिएट
हेल्प,
तो बहुत सरल है, 4-5 लाख रुपए का एक ग्रुप फंड बना दें और उसका जो इंटरेस्ट आएगा उसी से वो
नहीं है जैसा सरल नहीं है।
वैसे एक्चुअली में आपका सजेशन ठीक है कि फिक्स डिपॉजिट का जो
इंटरेस्ट आएगा
उससे निकल सकते हैं। सामूहिक रूप से हमारी टीम है महिलाओं की, वो महावीर जयंती पर कुछ आश्रम जाते हैं पर इस तरह से हमने कोई प्रोजेक्ट नहीं।
आपके हाथ में कोई डॉक्टर है जो डॉक्टर जिसके पास रोज दिन भर में 1000 पेशेंट आते हैं और आपने उसको तय करके रखा है, जैसे एक समय हुआ करता था वर्णी जी का, जब वर्णी जी कहीं चले जाओ, कुंदन लाल सिंघई और कमरिया जी दो जने हैं, सो आपको जितने पैसा लिखवाने हैं सो उनके नाम से लिखवा दो, वर्णी जी को उन्होंने कह दी है, ऐसे आपने कोई को कह दी कौन डॉक्टर को, चाहे जो आए जितो पैसा हो भैया आप तो उसके लगा देना, हमसे ले लेना, पेमेंट महीना भर में हम करेंगे, आप निश्चिंत होकर के, ऐसा है आपके पास? मैं ये इस तरफ इशारा कर रहा हूँ,
डॉक्टर्स भी अपने समक्ष आए
नहीं डॉक्टर आप समझिएगा, आप समझिए उस चीज को, मेरी बात को आसानी से नहीं होगा, आप समझिएगा पहले कि हमें हमें किस डायरेक्शन में काम करना है। हम एक दिन के लिए भले ही कर रहे हैं, आप ऐसा कर सकते हैं कि डॉक्टर को बोल सकते हैं कि आज के दिन इस महीने में आप चलिए और सब छोड़िए, आपने कभी किया होगा कि फलाने तीर्थ क्षेत्र पर 351 रुपये लिखवा दिए, हमारे नाम से वर्ष में एक बार पूजा होगी और वो कौन सा दिन, हमारा जन्म का दिन, चलिए आपने वहां तो लिखवा दिया। क्या आप ऐसा नहीं कर सकते कि मेरे जन्म के दिन ये है, डॉक्टर नोट कर लो, 5 डॉक्टर नोट कर लो, आपके पेशेंट जो भी आए आज के दिन, जो नहीं दे सकते हैं उनके लिए हमारी तरफ से दीजिएगा, पेमेंट हम करेंगे, आज शाम को पहुंच करके ही आपको करेंगे, ताकि हम अपना जन्मदिन इस तरह मनाएंगे कि आज हमने 5 डॉक्टर्स को, ये वे है। मेरा मतलब है कि ये वे आप व्यक्तिगत तौर पर, वो नहीं कि सामूहिक तौर पर, तो आपने कहीं डिपॉजिट नहीं करना, कहीं डिपॉजिट नहीं करना कि बहुत सारा डिपॉजिट करना है, नहीं, अपने पास डिपॉजिट कर लो। कल हम लोग शाम को इस पे भी टॉपिक पे चर्चा की थी कि नहीं महाराज, एक जगह डिपॉजिट नहीं करना कि 10 लोगों ने मिलकर 5 लाख रुपए डिपॉजिट कर दिया, वो भी खतरे वाला काम नहीं। हमने अपने पास इतने रुपए रख रखे हैं अपने लिए अलग से, उसमें हम डालते जाते हैं, उसी में से निकालते जाते हैं, किसी को नहीं देना, अपने स्वयं अपना स्वयं का एक फंड व्यक्ति का बना है जिसमें से वो करता है, किसी से नहीं कहता, ना जाओ, आवश्यकता भी नहीं कहने की। ऐसे अगर पूरे उसमें जाल बिछ जाए उस जगह जगह, तो लोगों को तो एक जागृति आ जाएगी कि अरे भाई ये कौन व्यक्ति हैं, जो 2-4-10 दिन पता नहीं लगेगा, लेकिन ये कौन व्यक्ति हैं, ये उधर इधर के क्षेत्र के, ये जैनी भी ऐसा करते हैं, उधर भी जैनी ऐसा करते हैं, इधर भी जैन व्यक्ति ऐसा करते हैं, सभी लोग इस तरह कर रहे हैं, ये एक चेतना जागृत हो सकती, ये सही अवदान होगा मेरे ख्याल से, इस पे सोचिए। मैं तो विचार ले सकता हूँ
नहीं।
वो तो है, टाइम डोनेट करना भी तो डोनेशन है, टाइम डोनेट किया हमने, उसके पास बैठे हैं, मनी नहीं है हमारे पास, हम बैठ के हमने उसको अपनी सिंपैथी दी है, गुड विशेस दी है, वो भी तो बहुत बड़ी चीज है, वो तो है ही। और शुरू करें कोई चीज, ये तो टॉपिक था, इसको तो क्लोज कर देते हैं। मैं सोच रहा था कि महावीर अष्टक छोटा सा है, 8 पद हैं कुल, अगर अपन एक एक दो दो भी करेंगे आसानी से तो 4 पद भी हैं। महावीर निर्वाण के पहले पहले महावीर अष्टक, भक्तांबर का विस्तारने का मन तो नहीं है, तो बहुत बड़ा है, महावीर अष्टक जो है शुरू किया जाए कि महावीर अष्टक 2 पद जो है उसके बस इतने ही हैं कि मैं बुलवा नहीं पाऊंगा, मैं सिर्फ आपको बोल दूंगा और आप